ாய ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாய நாதாய சீதாயாஹ பதயே நம. அதுலித பலதாம் ஹேம ஷைலாபதேஹம் தனுஜவன க்ருஷானும் ஜ்ஞானினாமக்ரகண்யம் சகலகுணநிதானம் வானராணாமதீஷம் ரகுபதி ப்ரியபக்தம் வாதஜாதம் நமாமி. பரத்ஜி மகாராஜ் அயோத்தியா ஆயே, கேகயி கே மஹல் மே கயே, பதா சலா பிதாஜி கா இஸ் பிரகார் சே இஸ் காரண சே தேஹாந்த் ஹோ கயா, படே க்ஷுப்த ஹோ கயே. ஔர் குப்ரி கோ சத்ருகன் ஜி நே தண்ட தியா. பரத் ஜி ஔர் சத்ருகன் ஜி கௌசல்யா மா கே பாஸ் கயே. கௌசல்யா மா கா ஸ்வரூப் தேக் கர்கே பரத் ஜி மஹாராஜ் ரோ படே. மலின பசன் விவரன விகல கிருஷ சரீர துக பார் கனக கலப பரபேலி ஸ்பன மானவ ஹனி துசார். பதி மர் கே, புத்திர வன் மே சலா கயா, புத்திர வது சாத் மே கயி, சாரா சரீர் துக்கோ கே பார் சே தபா ஹுவா ஹை, மேலா குச்சேலா கப்டா பேன் ரக்கா ஹை, ஆன்கோ சே ஜர் ஜர் ஆன்சூ பஹ ரஹே ஹை, ஐசா லகா கி ஜைசே கோயி ஸ்வர்ண லதா ஹை வோ துஷாரா பாத் சே காயல் ஹோ கயி ஹோ. ஐசீ மா நே ஜப் பரத் ஜி கோ தேகா தோ பரத் ஜி கோ தேக் கர்கே மா எக்தம் உட் கடி ஹுயி, உட்னே லகே தோ மூர்ச்சித் ஹோகர் ஜமீன் பர் கிர கயி. பரத் ஜி மஹாராஜ் ஜாகர் கௌசல்யா மா சே சிபட் கயே ஔர் ரோனே லகே. ஜி கேனே லகே, மா கேசி அயோத்தியா கோ சோட் கே கயா தா, கேசி அயோத்தியா கோ தேக் ரஹா ஹூ, பிதாஜி இஸ் அவஸ்தா கோ ஆஜ் மே ஆப் சே ராம் ஔர் சீதா கோ மாங்கு, லக்ஷ்மண் சே மாங்கு தோ கஹான் சே தோகே. தேகோ மா, இஸ் சன்சார் மே மேரே ஜெசா பாபி கோயி, மே கேகே கே யஹா க்யோ ஜனம் லியா, ஔர் மே தோ கேதா ஹூ கி கேகே யதி ஜனம்தே பாஞ்ச் ஹோ ஜாதி தோ கித்னா அச்சா ஹோதா. குல் கலங்க கோ ஜன்ம தேக் கர்கே கேகயி நே கித்னா படா அபராத் கியா ஹை, முஜே பாகி பனா தியா, பாயி பந்துவோ மே இஸ்னே ஜகடா படக் தியா, சம்பூர்ண திரிலோகி மே மேரே ஜேசா கௌன் அபாகா புருஷ ஹை. கி ஜிஸ்கி ஐசி துர்கதி ஹுயி ஹை ஔர் ஆப்கோ பி ஐசி துக் கி கடி தேக்னி பட் ரஹி ஹை. சாஹே பிதா ஸ்வர்க் மே ஜாயே, சாஹே ராம் ஜி வன் மே ஜாயே, இன் தோனோ ஹி அனர்த்தோ கா சப்சே படா காரண மே ஹூ. இஸ் பாவன் ரகுவன்ஷ் மே மே வைசே ஹி ஹூ ஜைசே பாஸ் கே பன் மே ஆக் ஹோதி ஹை, भयंकर दुख के अंदर ये सारा रघुकुल, सारी अयोध्या जल रही है, ये सारा दुख मेरे कारण से हो रहा है। माँ के चरणों में बार बार गिरते हैं, माँ पर हाथ फेरती है, माँ का हृदय बड़ा सरल है। कौशल्या माँ का स्वभाव तो बहुत शीतल है। माँ ने भरत को अपने छाती से लगाया और इतना आनंद का अनुभव किया कि जैसे मेरा राम वन में से लौट के आ गया। शत्रुघ्न को कौशल्या माँ ने एकदम अपने छाती से लगाकर उसके छोड़ा ही नहीं। कौशल्या जी के हृदय में न तो शोक समा रहा है और न ही स्नेह समा रहा है। शोक और स्नेह दोनों से उनका हृदय डूबा हुआ है। राम जी की मां का स्वभाव ऐसा नहीं होगा तो किसका होगा। भरत जी को गोद में बैठाकर भिलकते हुए भरत जी के आंसू को पूंछ करके बहुत कोमल शब्दों में कौशल्या जी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अभी भी कोई बात नहीं, थोड़ा धीरज धारण करो। कभी कभी मनुष्य की घड़ी खराब आ ही जाती है, उस समय में धैर्य को स्वीकार करना चाहिए, शोक को नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे मन में किसी प्रकार की ग्लानी नहीं होनी चाहिए कि इन सब घटनाओं के पीछे तुम्हारा हाथ था, ऐसा मत सोचो। ये सब समय की गति है और कर्म का फल है। जिसको कोई नहीं चाहता है वो चीजें आती हैं, तो वो सब कर्म का फल है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। आज विधाता मेरे लिए उल्टा हो गया, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर विचार तो करो भरत। इतना दुख सह करके भी मैं जी रही हूं और अभी क्या हुआ है। मैं कैसे कह सकती हूं कि आगे भी मुझे दुख नहीं होगा। न जाने क्या क्या उस विधाता को भाता होगा, क्या क्या वो दिन दिखाएगा। भरत, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ यहां ठीक ठाक था। राम को पिताजी ने बुलाया और जब राम ने ये सुना कि मुझे वन में जाना है, तो बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने अपने वो वस्त्र तो उतार दिए, आभूषण उतार दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। मैं उसका मुख देखती रही, उसके हृदय में जरा सा भी कोई हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, शोक कुछ नहीं था, वैसा का वैसा प्रसन्न था। सबको उसने संतुष्ट किया, सबसे प्रेम से मिलकर के गया। सीता तो कैसे पीछे रह सकती थी बेटा, आखिर वो स्त्री धर्म को जानती थी ना। वो राम जी के चरणों में अनुराग रखने वाली, समझाने पर भी यहां नहीं रही। लक्ष्मण तो ये बात सुनते ही कि राम वन में जा रहे हैं, वो साथ में रवाना हो गए। मेरे सामने की बात है भरत, राम जी ने उसको रखने का बहुत प्रयत्न किया, लक्ष्मण रहा नहीं। उसके बाद राम जी सभी को प्रणाम करके भारिया सीता और भाई लक्ष्मण को लेकर यहां से रवाना हो गए। ये राम कथा में तुम्हारे जाने के बाद की बात सुना रही हूं। आश्चर्य देखो भरत, राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए। गयउ न संग न प्राण पठाए, हमारे प्राण उनके साथ में नहीं गए और हमारे प्राण यहीं रह गए। ये सब इन आंखों के सामने हुआ। या तो मैं उनके साथ चली जाती, उनके साथ भी नहीं गई, और न ये प्राणी हमको छोड़ के गए। ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है। इतना देखते हुए भी मैं जी कैसे रही हूं? मुझे इस बात की तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं राम जैसे बेटे की मां हूं। मुझे तो इसी बात की चिंता है कि मैं जी कैसे रही हूं। इस संसार में जीना मरना तो तुम्हारे पिताजी का था बेटा। हमारा हृदय तो 100 बज्रों के समान बड़ा कठोर है। अब क्या बताए, न जिया जाता है न मरा जाता है। कौसल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राज गृह मानहु शोक निवास। क्या कौसल्या जी के प्रेम भरे वचन थे, सारा रनिवास रो पड़ा, सारा राजगृह व्याकुल हो गया। मानो ये राजगृह नहीं है, ये शोक गृह है, शोक का निवास हो गया यहां। भरत और शत्रुघ्न तो रोते रोते चुप ही नहीं होते हैं। कौशल्या जी ने बार बार उनको समझाया, बहुत विवेक के वचन सुनाए कि बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो। माता ने कई प्रकार की पुराणों की कथाएं सुनाई कि संसार में जो भी आता है उसके लिए एक जैसी परिस्थिति थोड़ी ही रहती है। बड़े बड़े ऋषि महापुरुष, बड़े बड़े राजा लोग, संत, किनके सामने अनहोनी घटनाएं नहीं हुई है। सब बातें सुनाई। कौशल्या जी के वाणी में बड़ा सार था। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। अब भरत जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके अपनी तरफ से छल रहित सरल वाणी बोलने लगे। कहने लगे, मां मेरी बात सुनो, इस संसार में जितने पाप हैं वो पाप आकर मुझे लगे। यदि राम को मैंने वनवास में भेजने की कोई योजना बनाई हो, कोई मन में भी बात आई हो, जो बेटा जिन माँ बाप से जन्म लेता है वो उन्हीं को ही मारता है, उनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगेगा यदि मैं राम जी को वन में भेजता हूं तो। ब्राह्मणों की बस्ती में जाकर आग लगा दे, कोई गौशाला में जाकर गौशाला में आग लगा दे, उसके उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। जो स्त्री अपने बालक का वध कर देती है उसको जो पाप लगे वो पाप मुझे लगे यदि मैं राम जी को वन में भेजता हूं। मीत महीपति माहुर दीने, और राजा को जो व्यक्ति माहुर माने जहर देता है, राजा के साथ मित्रता रख करके, उसके साथ प्रेम रख करके, फिर चुपचाप उसको जो जहर देता है उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगेगा। सब प्रकार के पाप मेरे अंदर आएंगे यदि मोर मत माता, मेरा यदि इसमें जरा सा भी मत भी हो तो। हमारे दिमाग में भी ये बात नहीं आई। सुनो माता, जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूतगण घोर, तेहि कहि गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो भगवान को, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को छोड़ करके भूतों की उपासना करते हैं, प्रेतों की उपासना करते हैं, मेले मेले गंदे गंदे मंत्रों का जाप करते हैं, मैली चीज का सेवन करते हैं, उनको जो पाप लगता है वो पाप मां मुझे लगेगी, मेरी इसमें जरा सी भी सम्मति हो। जो लोग वेदों को बेचते हैं, वेदों को बेचना माने तो हम तुम्हारे लिए ये काम कर देंगे, तुम हमको इतना पैसा दे, वैदिक अनुष्ठान कराएंगे, हम तुम्हारा यज्ञ करवा देंगे, इतना पैसा हमको देना पड़ेगा। ऐसे तो बेच ही वेद धर्म दुही ले ही, वेदों को जो बेचते हैं, धर्म को जो दू लेते हैं, दूसरे के पाप की चुगलियां करते फिरते हैं कि वो आदमी ऐसा है, वो भाई ऐसी, वो माई ऐसी, ऐसे दूसरों की चुगलियां करते रहते हैं, जो मन में कपटता रखते हैं, जो कलह प्रिय है, क्रोधी है, शास्त्रों की जो निंदा करते हैं, उपहास करते हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, फूट गए उनके, क्या लिखा है, ऐसे ऐसे जो वेदों की निंदा करते हैं, लोभ रखते हैं, लंपट है, लोलुप है, जो दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री पर जिनकी दृष्टि बनी रहती है, उनकी जो दुर्गति होती है, हे मां वो दुर्गति मेरी होगी यदि मेरी राम जी को वन में भेजने की सम्मति होगी। जिन्होंने मानव शरीर प्राप्त किया और कभी सत्संग नहीं किया, भगवान के इस परमार्थ मार्ग में जिन्होंने कभी पैर नहीं रखा, इधर सदाई विमुख रहे, बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला और भगवान का भजन नहीं किया, जिनको भगवान की कभी कथाएं अच्छी नहीं लगी, अच्छे मार्ग को छोड़ करके वाम मार्ग में जो चल पड़े, ऊपर से वेश तो बहुत अच्छा बनाया, साधुओं का सा बनाया, लेकिन अंदर जिनके बहुत गंदगी भरी पड़ी है, जिन्होंने संसार को छला है, अपने को अच्छा बता करके जिन्होंने भीतर ही भीतर बुरा काम किया है, उनकी जो गति होती है, हे भगवान शंकर मैं अपनी माँ के सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ, ये बोलता हूँ, वो शंकर मेरी गति देओ यदि मैंने राम जी को वन में भेजने का जरा सा भी कोई विचार भी किया हो। भरत जी महाराज ऐसी सफाई देने लगे। अब देखो कई लोग इसमें भी कहते हैं कि भरत जी को सफाई देने की क्या जरूरत है। एक बात व्यवहार में आती है, किसी आदमी पर झूठा लांछन लगे ना, तो आजकल तो एक प्रथा चल पड़ी, उसकी उससे सफाई की आशा रखते हैं, उसने सफाई नहीं दी इसका मतलब वो झूठा है, और जो भला आदमी होता है वो सफाई देना नहीं चाहता, वो सफाई देना नहीं चाहता। क्यों? सफाई तो वो दे कि भाई वास्तव में जिसको संसार में मान बढ़ाई चाहिए वो सफाई देवे, सफाई तो झूठी भी हो सकती है। आज किसी ने मेरे पर लांछन लगाया तो मुझे यदि सफाई देने की जरूरत पड़ी तो मैं बहुत झूठा हूं, मैं गलत हूं, व्यवहार में तो ये बात है, कायदे में तो ये बात है, मुझे उसकी सफाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी जन्म में कोई न कोई मैंने पाप किया, तभी तो ये मेरी बात बनी, तभी तो मेरी निंदा हुई, किसी जन्म का कोई होगा तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। परंतु भरत जी महाराज को तो सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इतनी सफाई भरत जी ने क्यों दी, और वो भी माँ कौशल्या के सामने दी, क्या माँ जानती नहीं थी? ये सफाई दी है, गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि दुनिया को इन इन पापों से बचना चाहिए, कौन सफाई देगा बताओ, ये इन इन पापों से बचने के लिए जिन पापों की निंदा भगवान के परम भक्त भरत जी महाराज करते हैं वो पाप कितने निंदनीय है, साफ लिखा है, देखो जे अगतिय बालक वध कीने, ये महान भयंकर पाप है, उन सब पापों का सार रूप से वर्णन किया। वाल्मीकि रामायण में सुना, बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है, वहां लो लकड़ का व्यापार, लो का जो व्यापार करता है उसको जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे, गोस्वामी जी महाराज ने उसमें से ले लिया। जो स्त्रियां बालक को मार दे उनको पाप लगता है, अब बताओ इसमें इतना भयंकर पाप लग गया, और जो स्त्री अपने गर्भ में रहने वाले बालक को मार दे उसके मारने में सहायता करे, कितना भयंकर पाप है। अस्तु। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाय। बड़ी सत्यता से सरलता से भरत जी महाराज ने बात कही तो कौशल्या माँ ने कहा, कहते राम प्रियतात तुम सदा वचन मन का। बेटा तुम तो राम के सदाई प्रिय हो, तन से मन से वचन से सब प्रकार से प्रिय हो, राम को तुम प्रिय हो और तुमको राम जी प्रिय है। राम प्राणौते प्राण तुम्हारे, तुम्हारे लिए राम जी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है और तुम राम जी के लिए ऐसे ही हो। सुनो भरत, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा से चाहे जहर टपकने लग जाए, चाहे बर्फ से आग पैदा हो जाए, चाहे मछली है वो पानी से प्रेम करना छोड़ दे, चाहे ज्ञान हो और मोह नष्ट न हो, ऐसा सब कुछ संभव है। ये असंभव बातें हैं वैसे असंभव, पर ये असंभव भी संभव हो जाए, परंतु भगवान राम, राम के प्रतिकूल तुम कभी नहीं हो सकते, ये मैं सत्यता पूर्वक कह रही हूं। जो लोग इसमें तुम्हारा मत मानेंगे कि इसमें तो कहीं कहीं भरत की चाल है, तो वे लोग न तो यहां संसार में सुख प्राप्त करेंगे और न मरने के बाद उनकी मुक्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसमें एक शब्द आया, उस पर ध्यान देने की बात है, भय ज्ञान उबरु मिटे न मोह। ज्ञान हो जाए लेकिन मोह न मिटे। आजकल लोग कहते हैं हमको पता है संसार को छोड़ के मरना तो पड़ेगा, कुटुंब भी छोड़ना पड़ेगा, पर क्या बताएं मोह नष्ट नहीं होता है, इसका मतलब अपने को पता ही नहीं है। ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हमको ज्ञान हो गया, ये ऊपर सा ज्ञान है, निज ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ है, निज ज्ञान अंदर का ज्ञान, ऊपर से भाई सुन लिया, ऊपर से समझ लिया, ऊपर से बोल दिया, परंतु निज ज्ञान नहीं हुआ है। ऐसा कहकर के भरत जी महाराज को तो हृदय से चिपका लिया कौशल्या जी ने। और देखो कैसे समय में क्या क्या शरीर में लक्षण पैदा हुआ हो, कौशल्या माता को भरत जी के वचनों से इतनी शांति मिली कि थन पय श्रवई नयन जल छाए, उन कौशल्या माता जी के दूध टपकने लग गया। बताओ दूध माता के कब आता है, जब बहुत माता के अंदर स्नेह उमड़ता है तब दूध आता है। तो कौशल्या माता के ऐसे समय में कैसा स्नेह उमड़ा, इधर तो पति मरे हुए, इधर इनका बेटा वन में गया हुआ, इधर इतनी बड़ी हलचल हो रही है, लेकिन भरत का प्रेम ऐसा है कि कौशल्या जी में भी प्रेम पैदा कर दिया। आंखों से तो जल बरस रहा है और शरीर से दूध बरस रहा है। करत विलाप बहुत यही भांति, ऐसे माँ बेटे बेचारे हो रहे। सारी रात बीत गई, वशिष्ठ जी आए, वामदेव जी आए, सब लोग आए और माँ बेटों को कहने लगे, आप लोग धीरज धारण करो, अब बताओ कर भी क्या सकते हो, ये अवसर तो धैर्य का होता है। गुरु जी को देख करके भरत जी उठे, गुरु जी ने कहा बेटा अब आगे का काम करो, शरीर यहां पढ़ाई थोड़ी रखना है, शरीर का अंतिम संस्कार करो। तो राजा को खूब अच्छे ढंग से स्नान वगैरह कराकर बड़ा ही सुंदर विमान बनाकर उसमें विराजमान करके चंदन अगर आदि को लेकर के वहां दाह संस्कार किया सरयू नदी के किनारे। आज भी है वहां दशरथ जी महाराज का जहां दाह संस्कार हुआ, सरयू किनारे से तो बहुत दूर होता है, तो पूछा गया कि भाई यहां दाह संस्कार हुआ, रामायण में तो सरयू के किनारे बताया था, सरयू थी बहुत दूर। तो कहते हैं उस समय यहां इधर ही बहा करती थी, वहां काला कपड़ा, काला तिल, उड़द की दाल, ऐसी कुछ काली काली चीजें हैं, वहां दशरथ जी का जहां दाह संस्कार हुआ वहां ले जा करके और तेल ये सब ले जा करके वहां रखते हैं, कहते हैं उनके सब जो है दरिद्रता दुख और ये सब नष्ट हो जाते हैं ऐसा मानते हैं। सरजू तीर रची चिता बनाई और फिर जो है जलांजलि दी तिलांजलि दी और सब जो है अंतिम प्रकार के सब काम कर लिए। वाल्मीकि रामायण में आया कि दशरथ जी महाराज का दाह संस्कार हुआ ना तो वो 12वें दिन हुआ, 12वें दिन दाह संस्कार, क्योंकि जो है जाने में लगे थे उनको दिन, इधर आने में दिन लगे तो इसी में दिन पूरे 12 ऐसे लगे उनके, 11-12 दिन हुए मतलब लगभग। खूब अच्छी तरह से दान वगैरह कर दिया, अब राजसभा लगी, अब राजसभा के अंदर सब लोग बैठे हुए थे, भरत जी महाराज भी बैठे हुए थे, माताएं भी बैठी हुई थी, सब लोग वहां पर बैठे हुए थे। भरत जी महाराज तो उस राजसभा में वशिष्ठ जी के पास बैठ गए और नीचा मुख कर लिए और अपने और अपनी माँ को याद कर करके वे तो दुखी हो गए। कैकेयी कुटिल कीन जैसी करनी, बार बार एक ही बात याद आए कि देखो कैकेयी ने कैसी कुटिलता रची, कैसा इस कैकेयी ने ये काम रचा, तो वो बैठे बैठे रोने लग गए। सजल नयन पुल के ऊ मुनिराओ, वशिष्ठ जी महाराज वहां पर कहने लगे कि राम ने भरत, राम का गुण शील स्वभाव सभी जानते हैं, तुम्हारे पिताजी का जो धर्म व्रत था उसकी प्रशंसा हम क्या करें, उनकी प्रशंसा तो त्रिलोकी में हो रही है। और देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम के प्रेम का निर्वाह कैसा किया, शरीर छोड़ गए। और राम का तो भाई बड़ा विचित्र स्वभाव, और लक्ष्मण का और सीता का भी प्रेम देखिए, सब राम जी के अंदर प्रेम रखने वाले, तुम्हारे पिता भी और सीता भी और लक्ष्मण भी। अः भरत जी महाराज झर झर रोने लग गए, खुद वशिष्ठ जी महाराज भी भरत जी की दशा देखकर शोक और स्नेह में मग्न हो गए। बड़े ज्ञानी हैं वशिष्ठ जी महाराज, उनकी दशा हो गई। देखो ज्ञानियों के द्वारा कभी ऐसी अवस्था में रोना होता है वो हमारे जैसे अज्ञानी लोगों के समान रोना नहीं होता है, उनका रोना एक अलग ही प्रेम में होता है, प्रेम में। सुनहु भरत भावी प्रबल विलखी कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरण जस अपो जस विधिहात। देखो भरत बिलक गए हमारे वशिष्ठ जी महाराज, बिलक करके कहने, सुनो भरत ये भावी बड़ी प्रबल होती है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये अपने हाथ में नहीं होते, भगवान के हाथ में, विधि के हाथ में होते हैं। तुम्हारे मन में ही शायद बार बार आ रहा होगा कि केकी ने अच्छा नहीं किया, नहीं छोड़ो इस बात को, जो घटना घट चुकी होती है उसके बाद तुमने ऐसा किया और तुमने ऐसा किया, ये सब बातें व्यर्थ की है, किसी पर दोष देने की जरूरत नहीं है, क्यों विचार करो। दशरथ जी के लिए यदि तुम शोक करते हो तो भी उचित नहीं है, क्योंकि दशरथ जी शोक के योग्य थोड़े ही थे, दशरथ जी तो आदर्श पुरुष थे, उनके आदर्श के अनुसार हम चले उसके लिए थे। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो शोक करने योग्य होते हैं, कौन? ब्राह्मण तो वो शोक के योग्य होता है जो वेद नहीं पढ़ता, पाठ पूजा नहीं करता, भगवान का ध्यान नहीं करता, विषयों में पड़ा रहता है, वो ब्राह्मण शोक के योग्य होता है। राजा वो शोक के योग्य होता है जो नीति को नहीं जानता है, प्रजा का पालन नहीं करता है, प्रजा को प्राणों के समान नहीं समझता है। वैश्य वो शोषणी होता है जिसको खूब धन तो मिला है लेकिन बहुत कंजूसी रखता है, खर्च नहीं करता, जो अतिथि की सेवा में नहीं लगाता, जो भगवान शिव की सेवा में नहीं लगाता, भक्ति नहीं करता, वो वैश्य है, वो शोषणी होता है। शूद्र वो शोषणी होता है जो ब्राह्मण का अपमान करता है और अपने मान के लिए आगे बोल बोल के बोलता है, मुखर मान प्रिय बड़बड़ करके बात बनाता है, कभी क्या बोलता है जाने कितना ही ज्ञान है उसको, ज्ञान का जिसको घमंड, वो शूद्र है, वो शोषणी होता है। स्त्री वो शोषणी होती है जो अपने पति को भी ऊपर से तो और ढंग से बोलती है और भीतर से उनको ठगती है, जो कुटिल है, थोड़ी थोड़ी बात पर जो लड़ती रहती है और जो मर्जी आए जैसा काम करती है, वो स्त्री शोचनी होती है। और ब्रह्मचारी है वो शोचनी होते हैं जो अपने गुरु की आज्ञा में नहीं रहते और मनमाना काम करते हैं। गृहस्थी वो शोचनी होता है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, मुंह बस कर्तव्य को भूलता रहता है। वानप्रस्थी वो शोचनी होता है कि जो हरदम प्रपंच में ही पड़ा रहता है, 50 वर्ष की उम्र आने के बाद सब वानप्रस्थी हैं, उसके बावजूद भी वो प्रपंच में ही पड़ा रहता है। 50 वर्ष की उम्र आ गई, अब तो घर में ही वानप्रस्थ लेना चाहिए, पर नहीं, प्रपंचरत। और साधु सन्यासी होते हैं वे शोचनीय होते हैं जिनको तपस्या अच्छी लगनी चाहिए, भगवान का भजन अच्छा लगना चाहिए, पर भावई भोगू, जिनको संसार के भोग पदार्थ अच्छे लगते हैं, अरे तुम साधु हो, सन्यासी हो, समाज में तुम अच्छे दिखते हो भाई, तुम्हारे आचरण ही तो लोगों पर प्रभाव डालने वाले, तुमको लोग ऊंचा मानते हैं, लेकिन तुम्हारे ही आचरण, तुम्हारा ही व्यवहार ऐसा, तो वो साधु शोचनीय होता है। जो आदमी हरदम लोगों की चुगलियां करता रहता है, जो बात बात पर क्रोध करता रहता है, माँ बाप से लड़ता झगड़ता रहता है, भाई बंधुओं में कलह मचाए रखता है, वो व्यक्ति शोचनीय होता है। जो व्यक्ति दूसरे का अपकार करता है, केवल अपने ही आराम, अपने ही शरीर को आराम मिले, दूसरे जाए भाड़ में और कोई परवाह नहीं करता, वो शोचनीय होता है। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, सब प्रकार का छल प्रपंच छोड़ करके सरलता से भगवान में लगे, ऐसा जो नहीं है वो शोचनीय होता है। तुम्हारे पिता शोचनीय नहीं थे भरत, तुम्हारे पिता तो भाई ऐसे विलक्षण थे, विधि हरि हरु सुर पति दिशि नाथा, बरनई सब दशरथ गुण गाथा। विधाता भी आज उनके गुणों की प्रशंसा करता है, विष्णु भी प्रशंसा करता है। देखो वशिष्ठ जी महाराज ने बात तो कह ही दी है, विष्णु तो अवतार लिया ही है ना, इसलिए बताओ, कहु तात कई भांति को करई बड़ाई तास। दशरथ जी महाराज की किन शब्दों में कोई आदमी बड़ाई करे, इतनी बड़ाई जीवन में, इतनी बड़ाई, उनकी बड़ाई के लिए शब्द नहीं है। क्यों? राम लखन तुम शत्रुहना सरिस सुवन सुचि जास। तुम्हारे राम लक्ष्मण तुम्हारे और शत्रुघ्न जैसे जिनके चार चार इतने अच्छे अच्छे बेटा हो, उसके लिए क्या चिंता है, दशरथ जी के लिए क्या चिंता की बात है। अब एक बात है, तुम्हारे ऐसे भाग्यवान पिता ने तुम्हारे सिर पर ये राजगद्दी का भार डाला है, तुम राजगद्दी स्वीकार करो भरत। मैं मानता हूं कि तुमको ये राजगद्दी अभी अच्छी नहीं लग रही है, पर पिता की आज्ञा का पालन करो। तुमको ये राजगद्दी दी है, क्या तुम पिता की आज्ञा को टालोगे? क्या राम जी अपने पिता की बात की रक्षा के लिए अयोध्या को और पिता को छोड़कर नहीं चले गए? क्या उनको छोड़कर जाने में कोई सुख मिलता था? पर पिता की आज्ञा थी, ऐसे ही पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आप यहां ये राजगद्दी स्वीकार कीजिए। निरपई वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। पिताजी को, तुम्हारे पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, नहीं तो वो कह देते हैं कि राम तुम मत जाओ, मेरे प्राण निकल जाएंगे, नहीं नहीं तुम मत जाओ यहां। लेकिन नहीं, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन का पालन करना उनको भी उचित लगा, नहीं तो वे भी राम जी के साथ ही चले जाते, नहीं तो वे भी राम जी को रोक लेते, हर प्रकार से राम को रोक सकते थे। पर नहीं, उन्होंने भी देखा कि राम का हित मेरे वचन का पालन करने में है। अरे परशुराम जी ने तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मां को मार दिया, सारी दुनिया में ये कथा प्रसिद्ध है। ये परशुराम जी के ऊपर कई लांछन लगाते हैं कि परशुराम जी ने पिता के कहने से मां को क्यों मार दिया। परशुराम जी ने इसलिए मारा अपने पिता का प्रभाव दुनिया को बताने के लिए। परशुराम जी की मां गई थी नदी के किनारे जल लेने, वहां गंधर्व लोग स्नान कर रहे थे। गंधर्व है वो शरीर से बड़े सुंदर, वो तो स्नान कर रहे थे ना, तो उनके केश थे ये केश। अब देखो शरीर इतना डूबा हुआ, थोड़ा सा केश कोई ऊपर दिख गया तो अरे इन लोगों के केश कितने सुंदर है। ये सारा बदन तो पानी में था, शरीर की सुंदरता तो नहीं दिखाई दी, ये केशों की सुंदरता दिखाई, एकदम पीले पीले केश। तो रेणुका ने इतना ही विचार किया कि इनके कितने सुंदर है, बड़े सुंदर केश है इनके। देरी हो गई तो जमदग्नि थे इनके पिता, उन्होंने देरी कैसे हो गई भाई, ध्यान लगाया, अच्छा तुमने अपने पति के अलावा किसी और को भी सुंदर मान लिया तो ये तुम्हारे द्वारा अपराध हो गया। अपने भाई अपने बेटों से कहा, परशुराम जी कहीं बाहर गए हुए थे, परशुराम जी के भाई वही थे, कहा कि तुम अपनी मां का सिर उतार दो। ये क्यों, क्यों का जवाब नहीं, मेरी आज्ञा के नहीं उतारते। अच्छा, क्रोध आ गया परशुराम जी, वो परशुराम जी के पिताजी को, अब करें क्या। इतने में ही परशुराम जी आ गए, क्या ये सब क्रोध में है, पिताजी भी मां डरी हुई ही, बेटे भी ऐसे, भाई लोग भी ऐसी, बात क्या है। पूछा पिताजी, हाँ तुम अपनी मां का सिर काट दो और अपने भाइयों का सिर काट दो। हलो मारा परसा था, फटाफट काट दिया सबका सिर। आ वाह परशुराम, वरदान मांग ले कि सबको जीवित करो, कहता था तू। और इनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इनका सिर काटा, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि तथास्तु। सब ऐसा लगा कि जैसे कोई सोकर के उठे। तो परशुराम जी ने क्यों सिर काटा, परशुराम जी बताना चाहते हैं कि मां की बाप की वही बात मानो, यदि गलती है तो उनको सुधारने की उनमें क्षमता हो तो मानो, और क्षमता नहीं हो तो ऐसी बात नहीं माननी चाहिए। मैंने तो ऐसा किया क्योंकि मेरे बाप में सामर्थ्य था, इसलिए वो जो है जिला सकते थे। आप लोगों के पिता माता ऐसे सामर्थ्यवान नहीं, आप लोग ऐसा न करना, दुनिया को न करने के लिए बताया है। देखा जाए तो अनुचित उचित विचार जी, ये उचित अनुचित का विचार तो छोड़ो। देखो जो पिताजी ने बात कही उसको सीधा स्वीकार कर लेता है, वो वास्तव में संसार में तो सुख प्राप्त करता है, उसका यश रहता है, मरने के बाद में वो देवलोक में अमर पति है, देवलोक में रहता है वो। इसलिए प्रजा पिता का वचन मानो और प्रजा का पालन करो, शोक मत करो भरत, राजा को बड़ा संतोष होगा, वो देवलोक में गए वे भी बड़े प्रसन्न होंगे कि बेटों ने मेरी बात मानी है। और ये काम वेद विदित भी है, वेद सम्मत है कि जिसको पिता राज्य देता है वही वास्तव में टीका को प्राप्त होता है। और मेरी भी आज्ञा है, मेरी बात भी मानो, अपने मन से ग्लानी हटाओ, राजगद्दी स्वीकार करो। देखो भरत जी महाराज के मन में भगवान की भक्ति ज्यादा थी ना, इसलिए सब तुच्छ लग रहा था अपने आप, ये क्या राजगद्दी है। देखो भरत, कौशल्या मां भी यही बात कहना चाहती है। और राम जी को जब पता चलेगा, सीता जी को पता चलेगा, तो वो भी बहुत सुखी होंगे, वाह भरत वाह भरत, तुमने राज्य संभाल लिया, पिताजी की आज्ञा मान ली, बड़ा अच्छा किया। तुमको कोई भी पंडित बुद्धिमान तो तुमको अनुचित कहेगा ही नहीं, और दूसरी बात ये सुनो कि तुमको यदि ज्यादा ग्लानी होती हो तो जब राम जी 14 वर्ष के बाद आ जाए तो उनको दे देना, लो महाराज आपकी चीज आप संभालो, सौंपे वो राज राम के आए। गुरु जी तो इतना कह करके चुप हो गए। सुमंत जी ने कहा, सुमंत जी राम जी को पहुंचा के आए थे ना, सुमंत जी ने हाथ जोड़ के कहा कीजिय गुर आय सुअवसी कहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहो। क्या पता हम तो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, परंतु हम इतना निवेदन करते थे हैं कि गुरुजी ने जो आज्ञा दी वो काम आप अवश्य कीजिए, और जब राम जी आए फिर तो आप जैसा उचित समझो वैसा कर लेना, तब तक राज्य तो संभालोगे। भरत जी महाराज तस से मस नहीं हुए, यूं ही बैठे रहे। अब कौशल्या जी बोलने लगी बहुत धैर्य धारण करके, कहा कि बेटा भरत, गुरु की आज्ञा है ये सबसे बड़ा पथ्य है। पथ्य माने अनुकूल सेवनीय पदार्थ को पथ्य बोलते हैं। गुरु की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारे लिए क्या अनुकूल सेवनीय पदार्थ हो सकता है? तुम अपने गुरु के वचनों का आदर करो। ये विषाद का समय नहीं है, समय की गति को देखकर तुम धीरज धारण करो। देखो तो सही बेटा, तुम्हारे पिता देवलोक सिधार गए, राम वन में चले गए, और तुम इस प्रकार से रो रहे हो बिलख रहे हो। सारी प्रजा, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी माताएं, इन सब का एकमात्र आधार तो तुम ही बचे हो ना। विधाता की करतूत उल्टी करतूत समझ करके धीरज धारण करो। मैं तुम्हारे पर बलिहारी हूं बेटा, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करो, प्रजा का पालन करो, सबका दुख हरो। भरत तुम अकेले ही सारा दुख भोगोगे, क्या फायदा, सबका दुख हरो। राम जी के छोटे भाई भरत जी ने गुरु जी के वचनों को भी सुना और मंत्री के वचनों को भी सुना, इधर माता के स्नेह भरे वचनों को सुना। सबके स्नेह में भरत जी महाराज एकदम व्याकुल हो गए। लोचन सरोरोह स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नए। भरत जी के मन में विरह का एक वृक्ष उगाई दिया, छोटा सा वृक्ष। उस वृक्ष को भरत जी महाराज अपनी आंखों के आंसुओं से सींचने लगे, जिसमें 2 पत्ते निकले हुए थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस समय भरत जी की दशा कौन जान सकता है, इतना है कि भरत जी की दशा देखकर सब अपने शरीर की सुध-बुध भूल गए। भरत जी की ये स्नेहमयी, राम जी में इतना स्नेह था, उस स्नेह को जो कि एक बहुत बड़ी सीमा है, उस सीमा को देख करके लोग गदगद हो गए। तब भरत जी महाराज सभा के अंदर खड़े हुए, जो बड़े धैर्यवान थे, उन्होंने हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ करके भरत जी महाराज सभी को अमृत से सने हुए वचनों को लेकर एक एक बात का उत्तर देना प्रारंभ किया। अब भरत जी महाराज जो उत्तर देंगे वो प्रसंग कल आएगा।